भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 16। कृपया दोहराइए हमारे पीछे। तस्मात् युवाम् ग्राम्य पशोः मम मूढ़धिया प्रभु अंधे तमसी मग्नस्य ज्ञानदीप उदीर्यता। तस्माद् युवां ग्राम्य पशो मम मूढ़धिया प्रभु अंधे तमसि मग्नस्य ज्ञान दीप उदीर्यता। तस्मात् अतः युवाम आप दोनों ग्राम्य पशु हो, शूकर या कुकर जैसे पशु का मम मुझे मूढ़ धिया अत्यंत मूर्ख प्रभु हे दोनों स्वामियों अंधे गहरे तमसी अंधकार में मग्नस्य मग्न रहने वाले का ज्ञान दीपह ज्ञान का प्रकाश उदीर्यताम प्रकाशित कीजिए। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद। चूंकि आप दोनों महापुरुष हैं अतः मुझे वास्तविक ज्ञान देने में समर्थ हैं। मैं अविद्या के अंधकार में डूबा रहने के कारण शूकर अथवा कुकर जैसे ग्राम्य पशु के समान मूढ़ हूं, अतः मुझे उबारने के लिए ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करें। तात्पर्य, ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे महापुरुषों के चरणारविंद में समर्पित हो ले जो वास्तविक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसीलिए कहा गया है वास्तविक दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकें। इसीलिए कहा गया है तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। जो जीवन के उच्चादर्श तथा महत्व को जानने का इच्छुक है उसे चाहिए कि प्रमाणिक गुरु के पास पहुंचे और उनकी शरण ग्रहण करे। जो सचमुच ही अविद्या के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान अर्जित करना चाहता है उसे ही गुरु के समीप जाना चाहिए, न तो भौतिक लाभ के लिए न ही किसी रोग से मुक्ति या चमत्कार प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जाने का यह कोई ढंग नहीं है। तद् विज्ञानार्थम् मनुष्य को चाहिए कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु ही गुरु के पास जाए। दुर्भाग्यवश इस कली काल में ऐसे अनेक धूर्त गुरु हैं जो अपने शिष्यों को जादू दिखाते हैं और ऐसे अनेक मूढ़ शिष्य हैं जो भौतिक लाभ हेतु ऐसा जादू देखना पसंद करते हैं। ऐसे शिष्य अविद्या के अंधकार से बचने के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताने में कोई रुचि नहीं रखते। कहा गया है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अज्ञान के गहन अंधकार में उत्पन्न हुआ और मेरे गुरु ने ज्ञान के दीप से मेरी आंखें खोली। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। इससे गुरु की परिभाषा प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति अविद्या के अंधकार में है, अतः हरेक को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित होने की आवश्यकता है। सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को प्रकाश प्रदान करके इस संसार के अविद्या जनित गहन अंधकार से गहन अंधकार में सड़ने से उबार लेता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामे नितिनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवत के इस सत्र में। आप में से कई लोग वरिष्ठ हैं, यहाँ पर आशीर्वाद दीजिए कुछ बोल सकें। असीम कृष्ण प्रभु भी यहाँ बैठे हुए हैं। से बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है चित्रकेतु महाराज का। बहुत से निर्देश या शिक्षाएं अपने जीवन के लिए हम इस प्रसंग से पाते हैं। ये अध्याय विशेष कर शिक्षाएं देने का अध्याय है। छोटा सा अध्याय है, 28 श्लोक हैं इसमें। और पहले 8 श्लोकों में हम देखते हैं कि अंगीरा मुनि और नारद मुनि कुछ उपदेश देते हैं, जिनको सुनकर चित्रकेतु महाराज सोचने लगते हैं कौन है ये। और फिर 9वें श्लोक से लेकर आगे 16वें श्लोक तक, यहाँ जिसको हम लोग अब पढ़ रहे हैं, तो इसमें चित्रकेतु महाराज गुणगान करते हैं नारद मुनि का और अंगीरा ऋषि का। क्योंकि वो ज्ञान सुनने के बाद, हैं कौन आप लोग, इतना ज्ञान आप दे रहे हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति हो नहीं सकते। और फिर जैसे इस श्लोक में प्रार्थना करते हैं ज्ञान के लिए। और फिर 17वें श्लोक से अब आगे नारद मुनि ज्ञान देंगे, जो ज्ञान की कामना, जो ज्ञान की मांग यहां वो कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, उसको फिर आगे देंगे अंतिम श्लोकों तक। और अंतिम दो श्लोकों में 27 और 28 श्लोक में दीक्षा देते हैं वो चित्रकेतु महाराज को। नारद मुनि कहते हैं मंत्र लो, बस इसके जपने से भगवान की प्राप्ति होगी। तो इस तरह ये बड़ा सुंदर अध्याय है। प्रारंभ में उपदेश है, फिर उपदेश प्राप्त करने की जो योग्यता है वो मध्य में दी गई है, और फिर उसके आधार पर जो दिव्य ज्ञान है उसकी प्राप्ति हुई है। तो ये इतना सुंदर 28 श्लोकों में ये अध्याय बटा हुआ है। और जैसे हम बता रहे थे कि इस प्रसंग में चित्रकेतु महाराज के बहुत से उपदेश शिक्षाएं हमें मिलती हैं। आज तो समय नहीं है कि उन सारी शिक्षाओं को हम कहें, लेकिन एक प्रमुख शिक्षा जो चित्रकेतु महाराज से इस प्रसंग में, इस अध्याय में हमें मिल सकती है, और वो ये है कि हमारे पास जीवन में बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा रोग होता है जो उन चीजों के होते हुए भी हमें प्रसन्न रहने नहीं देता, उन चीजों के होते हुए भी हमें अंधा बना देता है, और वो रोग है असंतुष्टि। अगर हम इस अध्याय में देखें तो वर्णन किया है, या पहले भी पिछले अध्याय में जब चित्रकेतु महाराज का वर्णन है, क्या नहीं था उनके पास, कोई कमी थी, धन था, सुंदरता थी, वर्णन किया गया, बहुत सुंदर थे स्वयं वो, तो सुंदरता थी, धन था, यश था, प्रसिद्ध थे, सब कुछ उनके पास था, बल था, लेकिन वो प्रसन्न नहीं थे, वो दुखी थे, तो देख नहीं पा रहे थे कि कितनी अच्छी चीजें हैं। क्यों? असंतुष्टि थी एक कारण से केवल, पुत्र नहीं है। सुंदर पत्नियां थीं, और इन्होंने तो कृष्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मतलब कृष्ण तो 16108 तक ही थे, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं पत्नियों के मामले में, फिर भी प्रसन्नता नहीं, और एक से एक सुंदर स्त्रियां, प्रसन्नता नहीं। क्यों? असंतुष्टि थी हृदय में। तो जो व्यक्ति असंतुष्ट होता है तो उस समय सारे जगत की चीजें उसको प्रसन्नता नहीं दे सकती, एक असंतुष्टि, संतान नहीं है। तो ये बड़ा सुंदर शिक्षा हमारे लिए है, असंतुष्टि एक रोग है इस जीवन में। क्यों? क्योंकि वो बाकी अन्य चीजों को देखने नहीं देता, जैसे दीमक लग जाती है, कैंसर हो जाता है, तो बाकी जो शरीर अच्छा है उसको भी वो खराब करने लगता है, कोई प्रसन्नता नहीं होती। मोबाइल भी हो तो भी संतुष्टि नहीं होती। एक बोर्ड लगाना चाहिए, बाहर लगा है कि नहीं पता नहीं, कि अंदर आने से पहले मोबाइल्स, हाँ, ओह इतना बड़ा बड़ा लगा हुआ है यहां पर। लेकिन आप लोगों को और एक व्यवस्था करनी चाहिए वृंदावन व्यवस्थापन को, कि बाहर एक कचरे का डब्बा रख दें। हाँ जी, बहुत अच्छा, जब अंदर आए तो उसमें वो फेंक कर आए मोबाइल, और बाहर जाते समय ले सकते हैं। तो असंतुष्टि ये इतना बड़ा रोग है इस जगत के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि जिस चीज की कामना है बस उस चीज को चाहते। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बड़ी भूख लगी है, प्यास लगी है, आप उसको बड़ा हार पहना दीजिए, उसको गार्लैंड डालिए, उसको चंदन लगाइए, उसको क्या आनंद आएगा। उसको भूख लगी हुई है, भोजन चाहिए, प्यास लगी हुई है, पानी चाहिए। इसी तरह असंतुष्टि जब हृदय में होती है तो सारी चीजें, जैसे भगवान का हार प्राप्त होना बहुत बड़ा मान सम्मान है, अगर चंदन लग जाता है जो भगवान के चरणों से लगकर आया है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस व्यक्ति को जिसको भूख लगी है उसको ये सब चीजें आनंद नहीं देंगी। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस असंतुष्टि से बाहर आना, और इस असंतुष्टि से बाहर आने का मार्ग इस श्लोक में दिया गया। हमने इसलिए इस शिक्षा को कहा। वैसे तो बहुत सी शिक्षाएं हैं चित्रकेतु महाराज की, बाद में कैसे उनको भगवान प्राप्ति हुई, कैसे श्राप मिला, श्राप को उन्होंने कैसे ग्रहण किया, पार्वती जी के द्वारा ये सारी चीजें हमें इतनी सुंदर शिक्षाएं देती हैं। और फिर जब तक उन्होंने वृत्रासुर के रूप में अपना देह नहीं त्यागा, जीवन शिक्षाओं से भरा हुआ है इनका। लेकिन असंतुष्टि एक शिक्षा यहां पर हम ले रहे हैं, क्योंकि इस श्लोक में उसका उपाय दिया गया है कि कैसे हम उस असंतुष्टि से बाहर आ सकते हैं। असंतुष्टि क्यों है जीवन में, क्योंकि यहां पर वर्णन है हमारे जीवन में असंतुष्टि होती है क्योंकि दिव्य ज्ञान का अभाव है। अविद्या हमारी सारी भौतिक इच्छाओं की जड़ है, अविद्या के कारण इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। हम अपने आप को शरीर मानकर जितने भी कार्य करते अविद्या के कारण है, और इसलिए दिव्य ज्ञान यहां पर जिसकी मांग चित्रकेतु महाराज कर रहे हैं, ये दिव्य ज्ञान एक ही औषधि है इस रोग से परे जाने की। और बहुत सुंदर इस श्लोक में वर्णन है अनुवाद में और तात्पर्य में। अनुवाद में योग्यता दी गई है, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य का प्रारंभ करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। कौन सी विधि है, जो श्लोक में दी गई है। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद ने बस एक लाइन लिख दी, ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। क्या विधि है, ये जो ऊपर श्लोक में कहा गया है। तो इस श्लोक में तीन चीजें प्रकट हो रही हैं ज्ञान प्राप्त करने की विधि जो प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने की पहली विधि है, पहली चीज जैसे प्रभुपाद भी लिखते हैं कि इस श्लोक में बताया गया कि सबसे पहले चित्रकेतु महाराज जिनसे ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं उनका गुणगान कर रहे हैं, आप दोनों महापुरुष हैं और वास्तविक ज्ञान देने में समर्थ हैं। ये पहली योग्यता है, अगर हमें दिव्य ज्ञान लेना है तो हमें किसी ऐसे समर्थ गुरु के पास जाकर उनका महत्व समझना चाहिए। हम गुरु के पास चले जाते हैं लेकिन महत्व नहीं समझते हैं। संस्था में आ गए, इस्कॉन में प्रभुपाद के महत्व को अभी तक नहीं जाने हैं। हम सोचते हैं प्रभुपाद ने क्या किया, 108 मंदिर बना दिए, कुछ हजार शिष्यों को दीक्षा दे दी, एक संस्था बना दी, बस हम इतना ही जानते हैं प्रभुपाद के विषय में। प्रभुपाद का गुणगान जानना चाहिए, पहली चीज यहां पर। वो कह रहे हैं कि आप समर्थ हैं हमें ज्ञान देने में, प्रभुपाद वो हैं जो हमें बिना योग्यता के भगवान के धाम में प्रवेश करा सकते हैं। प्रभुपाद वो हैं जो हमारी आंखों में जो अंजन लगा हुआ है, प्रेमांजन नहीं, कामांजन जो हमारी आंखों में है उसको हटाकर प्रेमांजन लगा सकते हैं। प्रभुपाद ने कोई एक संस्था शुरू नहीं की है, कोई एक आंदोलन भी शुरू नहीं किया है, इन्होंने एक नया धर्म शुरू किया है जो आगे आने वाले कई वर्षों में धीरे धीरे बढ़ेगा। हम लोग तो प्रारंभ में हैं, प्रभुपाद के जाने के करीब 40-45 वर्ष के करीब हैं, इसलिए महत्व नहीं समझे हैं प्रभुपाद का। आगे आने वाला समय इसको जानेगा और कैसे ये बढ़ेगा। जिस प्रकार धर्म हुए, जीसस ने एक धर्म शुरू किया, मोहम्मद ने एक धर्म शुरू किया, लेकिन अब ये एक ऐसा धर्म शुरू हुआ जो 10,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर लोगों को मार्गदर्शन देगा। तो इसीलिए हमारे जीवन में प्रभुपाद ने क्या बदलाव लाया इसको हमें समझना चाहिए। तो पहली चीज ये है कि जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उनके महत्व को जानें। दूसरी चीज यहां हम देखते हैं अपनी स्थिति को समझना। मैं अविद्या के अंधकार में डूबा हुआ हूं, इसीलिए शूकर तथा शूकर जैसे ग्राम्य पशु के समान मूढ़ हूं। ये दूसरी चीज है कि ऐसा नहीं कि हम केवल जिनसे ज्ञान ले रहे हैं उनके महत्व को समझें, अपनी स्थिति। हमारी सबसे बड़ी कष्ट तकलीफ यही है कि हम अपनी स्थिति को नहीं समझते हैं। हम अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, हम भक्त हो जाते हैं, अपने नाम के आगे दास लगा लेते हैं और श्रेष्ठता बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं हमें लगता है हम बड़े श्रेष्ठ होते जा रहे हैं अन्य लोगों से। देखो दूसरे लोग कितने पतित हैं, हम जप करने लग गए, हमें ज्ञान हो गया, शास्त्र का ज्ञान हो गया, कुछ थोड़े श्लोक बोल दिए, हमें अपनी स्थिति जाननी चाहिए। ज्ञान का अर्थ यह है कि अपनी स्थिति को समझें। जैसे यहां ये कह रहे हैं कि मैं अंधकार में डूबे रहने के कारण शूकर के समान ग्राम में पशु हूं, मैं कोई ज्ञान नहीं है मुझे, इस चीज को हमें समझना चाहिए। और तीसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण जो अनुवाद में है कि इस चीज को समझकर हम समझें आचार्यों के महत्व को, हम अपनी स्थिति को समझें कि हमें आवश्यकता है बाहर निकलने की। जब व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझता है तो वो बाहर निकलने की आवश्यकता को नहीं जान पाता, तो आवश्यकता है और उसको समझकर क्या करें, ये तीसरी चीज अंत में। अतः मुझे उबारने के लिए ज्ञान का दीप प्रज्वलित करें, भिक्षुक बने, ये तीसरी चीज है। ज्ञान के भिक्षुक, कृपा के भिक्षुक याचना कर रहे हैं। ज्ञान आता है जब हम ऐसे याचक के भाव में हों। हर एक भक्त को भिक्षुक बनना चाहिए, कृपा का भिक्षुक। और कृपा कैसे आती है, गुरु की, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख ले, असली गुरु की कृपा क्या है, दिव्य ज्ञान। गुरु के पास जाना, प्रभुपाद कहते हैं गुरु के पास जाने के लिए क्या चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं अध्यायों के तात्पर्य के अगली लाइन में, जिज्ञासा चाहिए, नम्रता चाहिए। और गुरु के पास हमें इसलिए नहीं जाना चाहिए कि मेरे रोग हो रहा है क्या करें कुछ निकाल दीजिए। कई बार लोग आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं लेक्चर के बाद, आते हैं कि बड़े दिनों से बैक पेन ठीक नहीं हो रहा क्या करें, या फिर कभी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो लोग, पंडित जी हाथ देखना आता है क्या, बस उनके लिए भक्ति वही है। हमें तो कभी कभी लगता भी है, बोलना चाहिए कि हाँ आता है हाथ देखना, बताइए हाथ देखें, बोले मरने वाले हो, सही तो बोल रहे, गलत थोड़ी कह रहे हैं। तो इस दृष्टि से हमें दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है, तो यहां उस दिव्य ज्ञान का वर्णन है। तो गुरु का कार्य है दिव्य ज्ञान देना। और दिव्य ज्ञान क्या है, शास्त्रों में, भगवद गीता में, अन्य स्थानों पर दिव्य ज्ञान के तीन स्तर दिए गए हैं, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर इसको समझाते हैं, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतमा। इसको कई तरीके से समझा जा सकता है इस ज्ञान को। जैसे ब्रह्म के बारे में ज्ञान गुह्य है, परमात्मा गुह्यतर और भगवान गुह्यतमा। भौतिक प्रकृति के बारे में ज्ञान गुह्य है, जीव गुह्यतर और भगवान गुह्यतमा। ऐसे कई दृष्टि से हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष करते हैं, तो धर्म अर्थ काम ये गुह्य ज्ञान है, मोक्ष गुह्यतर ज्ञान है और भक्ति गुह्यतम ज्ञान है। या अन्य दृष्टि से देखा जाए तो अवतारों के बारे में ज्ञान, रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन, अवतारों के बारे में ज्ञान गुह्य है। कृष्ण के बारे में ज्ञान गुह्यतर है और चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज्ञान गुह्यतम है। तो ऐसे अलग अलग स्तर दिए गए हैं दिव्य ज्ञान के, और भी कई दृष्टि से उसको समझा जा सकता है। यहां पर श्लोक में ज्ञान की तुलना दीप से की गई है। भगवद गीता में भी भगवान इसको कहते ज्ञान दीपेन भास्वता, तो ज्ञान की तुलना की गई है दीप से, कैसे अंधकार को दूर करता है। और ज्ञान की अलग अलग तुलना की जा सकती है। ज्ञान की तुलना अग्नि से की गई है इस दिव्य ज्ञान की। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो अग्नि की तुलना क्यों की गई है ज्ञान से, क्योंकि ये उस अग्नि की तरह है जो हमारे सारे कर्म फलों को जला सकती है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, अच्छे बुरे सारे कर्मों को जला देती है। अग्नि कुछ देखती नहीं है, जब अग्नि लगती है, आग लगती है, तो ये नहीं देखती कि अच्छा व्यक्ति है इसको नहीं जलाएं, ये बुरा व्यक्ति है इसको जला दे, सबको जला देती है। तो इसी तरह ये जो अग्नि है ज्ञान की, दग्ध कर्माणि जितने कर्म हैं अच्छे बुरे सबको जला देती है। तो फिर कोई प्रश्न करेगा अच्छे बुरे दोनों कर्म जल जाते हैं तो फिर ऐसे कैसे, ये तो अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है, इस जगत में पाप और पुण्य दोनों पाप है भक्ति की दृष्टि से, क्योंकि पाप भी हमें बांधता है और पुण्य भी हमें बांधता है। पाप करेंगे तो कुछ निम्न योनि में जाना पड़ेगा, पुण्य करेंगे तो हो सकता है देवता बन जाएं, लेकिन फल क्या होगा, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, फिर से आना पड़ेगा। तो पाप भी हमें बांधता है, पुण्य भी हमें बांधता है, इसलिए दोनों ही इस जगत के बेकार हैं। और ये काम दिव्य ज्ञान करता है, दोनों को, दोनों प्रकार के कर्मों को समाप्त करता है, हमें तैयार कर देता है भगवान के लिए, हमें तैयार कर देता है भगवान के महत्व को समझने के लिए। गुह्य गुह्य तर से गुह्य तम तक उठाता है ये दिव्य ज्ञान, और बहुत आवश्यक है। गुह्य ज्ञान हमें यह देता है कि भौतिक जगत में कैसे बंधन होता है हमारा, ये गुह्य ज्ञान है, और इस भौतिक जगत से बाहर कैसे जाए, ये गुह्यतम गुह्यतर ज्ञान है। इस जगत में बंधन है, जगत के बाहर जाना, लेकिन उसके परे प्रेम करना, ये गुह्यतम ज्ञान है, वो हमें दिव्य ज्ञान सिखलाता है। तो इसीलिए अग्नि से तुलना की गई है, एक नाव से तुलना की गई है ज्ञान की। भगवद गीता में भगवान नाव से तुलना करते हैं कि एक नाव की तरह है जो इस सागर से हमें पार ले जा सकता है। कैसी नाव है, अविद्या को नाश करने वाली। इस जगत में हमारे अस्तित्व का कारण अविद्या है, और विद्या रूपी नाव हमें इस जगत के परे ले जाती है। इस ज्ञान की तुलना जैसे यहां दीप से भी की गई है, ज्ञान दीपेन भास्वता, दीप से की गई है कि अंधकार में है हम, और ये अंधकार इतना गहरा है रोज भागवत सुनने के बाद भी जाता नहीं है। हम लोग रोज सुनते हैं ना, हम शरीर नहीं आत्मा है, जैसे ये शब्द सुनते हैं आंखें बंद हो जाती हैं। कि हर व्यक्ति यही कहता है जो बैठते बोलते है, आत्मा है शरीर नहीं है, ठीक है कल भी सुना था परसों भी सुना था, मतलब सुन सुन के इतना हमारे प्रभाव हो जाता है कि अब वो प्रभाव ही नहीं करता है हमें। तो ये अंधकार है तमस, इसलिए प्रार्थनाएं की जाती थी। हम लोग स्कूल में थे, हमें ध्यान प्रार्थना होती थी, असतो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर मां अमृतंगमया। उस समय कुछ पता नहीं था, बस स्कूल में खड़े रहकर बोलना होता था, बोल देते थे असतो मां सदगमया, असत से सत की ओर, मृत्यु से अमृतंग की ओर, अंधकार से ज्ञान की ओर। तो इसलिए दीप है, ज्ञान दीपे न भास्वता, ज्ञान चाहिए, और इस ज्ञान की तुलना तलवार से की गई है। जब हम भक्ति करते हैं तो साथ साथ में, जैसे हम लोग चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं कि बहुत सारी उपशाखाएं आ जाती हैं, बहुत सारे उसका वर्णन विस्तार से वहां किया गया है, कुटीनाटी इत्यादि, बहुत सारा प्रतिष्ठा की भावना, निषेध, जो निषेध किया गया उसको करने की भावना, निषिद्धाचार, प्रतिष्ठाशा, ये सारी चीजें हमारे आ जाती हैं, और उसको काटने के लिए एक बड़ी अच्छी तलवार चाहिए। ज्ञान वो तलवार है। पहले स्कंद में भागवत में कहा गया है, यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदंति को विदस्तस्य को न कुरियात कथारतिम। एक तलवार चाहिए हमारी ग्रंथियों को काटने के लिए। भरी पड़ी है ग्रंथियां हृदय में, और हम रोज बनाते रहते हैं, गांठें बनाते रहते हैं, आसक्तियां हैं, ग्रंथियां मतलब आसक्तियां, भोग प्रवृत्ति, ये सारी भरी पड़ी हैं। ज्ञान की तलवार चाहिए, सिन्हा युक्ता, और वो काटेगी। छिंदन्ति को विदस्तस्य को न कुरिया, छिंदन्ति काटिए उसको। ये भागवत को केवल एक मनोरंजन का साधन मत बनाइए, भागवत को केवल एक कर्तव्य मानकर मत बैठिए। भागवत हर रोज जब बैठे, चाहे कोई भी क्यों ना कह रहा हो, जीवन बदलने का मार्ग स्वीकार कीजिए, तब देखिए भागवत कैसे आपके जीवन में प्रभाव करेगी। तो इसीलिए ये एक तलवार की तरह ज्ञान की तुलना की गई, और यहां पर जैसे दीप की तरह उसकी तुलना की जा रही है। तो इसीलिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान माया को दूर रखता है। जितना हम ज्ञान में हैं उतना ज्यादा, ज्ञान मतलब दिव्य ज्ञान, और वो भी दिव्य ज्ञान किसी प्रमाणिक गुरु से ग्रहण किया हुआ, उस भाव में, जैसे हमने शुरुआत में तीन जो योग्यताएं इस अनुवाद की बताई, नहीं तो अहंकार ले आएगा। तो ज्ञान रहे और हम लोग इस नाव में बैठकर इस तलवार को लेकर इस अग्नि को लेकर अपनी सारी इच्छाओं को जला दे। आप कल्पना कीजिए कुछ समय के लिए कि हमारे हृदय से सारी चीजें निकल जाएं, ये द्वेष, क्योंकि द्वेष प्रेम को उत्पन्न करने नहीं देता, भगवान की स्थिति को जानने नहीं देता। देवता तक मुह्यन्ति, देवता तक मोहित हो जाते हैं, कृष्ण को जान नहीं पाते। गर्ग संहिता में वर्णन है कि देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी फिर पहुंचे क्षीर सागर में, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, और ऐसा वर्णन है गर्ग संहिता में कि वहां पर ऐसा हुआ कि विष्णु ने सोचा कि इन सबको गोलोक लेके जाते हैं, तो सारे देवताओं को, ब्रह्मा जी शिव जी इत्यादि और जितने देवता हैं उन सबको लेकर प्रवेश करते हैं, गोलोक में लेके जाते हैं, और वहां देवता देख रहे हैं। पहले तो द्वार पर ही रोक दिया, जैसे ब्रह्मा जी को रोक दिया था द्वारका के द्वार पर, वहां सबको रोक दिया, कहां जाना है। तो उन्होंने कहा हम ब्रह्मा हैं, हम ये देवता हैं, हम वो देवता। बोले कहां से, कौन से ब्रह्मांड से आए हो, तुमको तो पता ही नहीं था अभी तक कि कई ब्रह्मांड होते हैं। तो खैर फिर जब अंदर जाने दिया, उसके बाद उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण वहां पर हैं और महाविष्णु श्री कृष्ण में प्रवेश कर देते हैं। उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु श्री कृष्ण में प्रवेश कर जाते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु श्री कृष्ण में प्रवेश कर जाते हैं। फिर उन्होंने देखा नरसिंह देव आए, वो श्री कृष्ण में प्रवेश कर जाते हैं। देवताओं को तब समझ में आया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो जब हम द्वेष करते हैं या अपनी प्रतिष्ठा की कामना करते हैं, हम इस चीज को समझ नहीं पाते कि कृष्ण ही भगवान है और उनकी सेवा करना जीवन का उद्देश्य है। हम अपने आप को भगवान मानने लगते हैं, विशेष करके भक्ति में आने के बाद। दरअसल जो भक्ति में नहीं है वो लोग अपने आप को भगवान नहीं मानते हैं, लेकिन हम जब हो जाते हैं भक्ति में तो हम अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानने लगते हैं। ब्रह्मचारी हो गए, दीक्षित हो गए, ब्राह्मण दीक्षित हो गए, सन्यासी हो गए, बड़ा स्तर बढ़ता जाता है हमारा। दरअसल ये स्तर बढ़ना चाहिए और नम्रता बढ़नी चाहिए। तो गुण क्या है इस दिव्य ज्ञान के? दिव्य ज्ञान जैसे हम वर्णन कर रहे थे कि जब तक द्वेष रहता है हम प्रेम को नहीं समझ पाते। सच्चा प्रेम क्या है? वसुदेव के उदाहरण से सीखते हैं। वसुदेव जी जो जेल में हैं, पुत्रों की कामना कर रहे हैं, पुत्र हो रहे हैं और उनको कंस मार रहे हैं, आप स्थिति समझ सकते हैं वसुदेव जी की, अपने सामने मरते हुए देख रहे हैं, लेकिन किस लिए? बस कृष्ण की कामना है। कष्ट सहे, जेल में रहे, सब चीजें कहीं, जो भी उन्होंने सही, सब चीजें किस लिए? केवल कृष्ण को देखने के लिए, केवल कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। अपने 6 पुत्रों को अपने सामने मरते हुए देखा, मरते हुए पहले पुत्र को तो खुद ले गए, मार दीजिए, 6 पुत्रों को मरते देखा, 7वें का पता नहीं कहां गया। और उनको जब कृष्ण प्रकट होते हैं, और कृष्ण प्रकट होते कहते मुझे गोकुल लेकर चलो। अब सोचिए उस व्यक्ति के लिए जो इतने समय से इंतजार कर रहा है कि अब आएंगे, मैं उनकी सेवा करूंगा, उनकी बाल लीलाओं को देखूंगा, आनंद लूंगा, कृष्ण कहते मुझे लेकर चलो। उसी समय जन्म होते ही वसुदेव ने कोई विरोध नहीं किया, ये प्रेम है। वसुदेव ने ये नहीं कहा कि 1-2 साल रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, आधा 1 घंटा रुक जाइए, जैसे ही कहा वसुदेव तुरंत तैयार, ये प्रेम है। सारी बाधाओं को पार करते हुए। तो कभी कभी हमारे मन में आता है कि हम लोग भगवान की सेवा करते हैं और हमारे जीवन में कष्ट आ जाते हैं। ये कष्ट क्यों देते हैं भगवान, हम तो उनकी सेवा कर रहे हैं, भगवान को बिल्कुल हमें कोई कष्ट नहीं देना चाहिए, संभालना चाहिए, हम उनके सेवक हैं, भगवान हमारी रक्षा करें। लेकिन कितने सारे कष्ट दे देते हैं, सेवा करते हुए कष्ट आते हैं। तो क्यों मन में ये प्रश्न आ जाता है, क्यों होता है ऐसा? ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान हमारा शुद्धिकरण चाहते हैं, ये इसलिए होता है कि भगवान हमारे समर्पण को और गहरा करना चाहते हैं। इसीलिए जब कष्ट आए सेवा करते हुए तो धन्यवाद देना चाहिए भगवान को, ये ज्ञान का फल है। अगर ज्ञान होगा हमें तो तो भगवान को धन्यवाद देंगे, प्रेम उत्पन्न होगा। ऐसा ज्ञान नहीं जो केवल शुष्क मानसिक चिंतन से उत्पन्न हो, वो तो केवल आपको एक ज्ञानी बनाएगा। ज्ञान होना चाहिए जिसमें प्रेम उत्पन्न हो। पद्म पुराण कहता है अर्जुन को भी अर्जुनिया बनना पड़ा। बहुत सुंदर उसमें वर्णन है कि कैसे अर्जुन गोपी बने और भूल गए कि मैं अर्जुन हूं, और कैसे गोपी बनकर उन्होंने आस्वादन किया उस प्रेम का, और फिर जब पुनः अर्जुन बने तो उस बात को याद रखा कि जो प्रेम का उन्होंने अनुभव किया था। तो इसलिए जो प्रेम है ये दिव्य ज्ञान का उद्देश्य है, कृष्ण के प्रति प्रेम को उत्पन्न करना, उस प्रेम को जो गोपियों में है, उस प्रेम को जो ब्रजवासियों में है, उस भाव को ग्रहण करना। गोपियों के भाव को ग्रहण करने का अर्थ यह नहीं है कि पुरुष स्त्री बनकर साड़ी पहनकर घूमने लगे हैं। गोपियों के भाव का ग्रहण करने का अर्थ है समर्पण का भाव। ये गोपी भाव है, पूर्ण समर्पण कृष्ण को, कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की जो भी कार्य है उसको प्रमुखता देना, अपनी इच्छाओं को ना रखना। तो क्या लाभ होता है इस दिव्य ज्ञान का जिसका यहां वर्णन किया जा रहा है, जैसे प्रभुपद बता रहे हैं किससे लेना है। प्रभुपद वर्णन करते एक प्रामाणिक गुरु से, सच्चे गुरु से, जिसका खुद का कोई भी उद्देश्य ना हो। एक प्रामाणिक गुरु की पहली परिभाषा यह है उसका खुद कुछ उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैं ज्ञान इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मैं ज्ञान इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मेरे अनुयायी हो जाए, मैं ज्ञान इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मेरा कोई बहुत बड़ा संपत्ति बन जाए, मैं ज्ञान इसलिए भी नहीं दे रहा हूं कि जगत में लोग मेरा गुणगान करें, मैं ज्ञान इसलिए दे रहा हूं कि ये व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करने लगे। ये सच्चा गुरु है। तो अपना कोई उद्देश्य ना होना, जैसे प्रभुपाद ने समझाया, भगवद गीता जैसे है वैसे ही यथारूप, जैसे कृष्ण ने कहा वैसे, ज्ञान को ऐसे देना चाहिए। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए इस ज्ञान को ग्रहण करना। और इस ज्ञान का लाभ क्या होता है? इस ज्ञान का लाभ होता है हृदय से इच्छाएं चली जाती हैं। श्रील प्रभुपाद जी से यहीं पर वृंदावन में पूछा गया, जब प्रभुपाद जाने वाले कविराज उनसे पूछते स्वामी जी कोई इच्छा है, प्रभुपाद ने कहा कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। तो क्या कैसे ये आ गई स्थिति कि जहां कोई इच्छा नहीं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई इच्छा आ जाती है, कुछ करने जा रहे हैं कहीं इच्छा आ जाती है, लेकिन दिव्य ज्ञान का पहला लाभ है कोई इच्छा नहीं। कृष्ण की प्रसन्नता जीवन का ध्येय है, कृष्ण को आनंद देना जीवन का ध्येय है। बस उसके लिए जितने भी कष्ट आए हम सहने के लिए तैयार हैं। दूसरा लाभ दिव्य ज्ञान का होता है कि हमारे अंदर करुणा उत्पन्न होती है, जो भगवान की सारी शक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, करुणा। जब करुणा शक्ति का उदय होता है तो बाकी सारी शक्तियां शांत हो जाती हैं, बाकी सारी शक्तियां प्रयास करती हैं। दामोदर लीला में हम लोग देखते हैं सारी शक्तियां प्रयास कर रही हैं कि भगवान बंधेंगे नहीं, लेकिन भगवान की करुणा शक्ति का उदय हुआ, यशोदा चाहती है बांधना तो फिर बंधेंगे ही, तो भगवान की सारी शक्तियां रोक नहीं पाई, यशोदा ने बांध दिया। गोकंठ पाशेन निबध्यमानम, गायों को बांधने वाली रस्सी से बांध दिया गोपाल को। तो इसीलिए करुणा भक्त के हृदय में आ जाती है। ये करुणा है श्रील प्रभुपाद की कि जिन्होंने पाश्चात्य जगत में जाकर ऐसे लोगों को यह ज्ञान प्राप्त कराया जिनकी कोई योग्यता नहीं थी। इसको कृपा कहते हैं। कृपा का अर्थ है वो जो बिना योग्यता के आए। योग्यता से जो आता है वो तो फिर न्याय हो गया। प्रभुपाद ने कृपा की। तो इसीलिए इच्छाओं से दूर जाना, करुणा भरना, ये हृदय में होना अनिवार्य है, और दिव्य ज्ञान इसको हमें प्रदान करता है। साथ ही साथ ये जो द्वेष है इसका नाश करता है, क्योंकि द्वेष के कारण हम किसी से ज्ञान नहीं ले पाते। एक बड़ा सुंदर उदाहरण भागवत का ही है, कौन कह रहे हैं भागवत? सुखदेव गोस्वामी। कितने वर्ष के बालक हैं? 16 वर्ष के। और सुन कौन रहे हैं? वशिष्ठ मुनि, जो उनसे कई कई लाखों साल बड़े हैं। वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, जो भगवान के गुरु रह चुके हैं, या हैं, रह चुके नहीं हैं, हैं भगवान के गुरु, वो बैठकर सुन रहे हैं। कोई द्वेष नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा जग प्रसिद्ध ऋषि हूं, ये 16 साल का लड़का मुझे क्या सिखाएगा। क्या क्या योग्यता थी, क्या कारण था? केवल सुनना चाहते थे। उन्हें पता था ये प्रामाणिक तरीके से है, भागवत है, सुनेंगे। कौन इतने बड़े बड़े ऋषि बैठकर, व्यासदेव स्वयं बैठकर सुन रहे हैं, अपने ही पुत्र को जिनको सिखाया है उन्होंने, वो बैठकर सुन रहे हैं। भागवत है ये, हृदय से द्वेष निकाल देता है ज्ञान। जब तक द्वेष है इस जगत में सुखी नहीं रह सकते। असंतुष्टि हमने कहा एक रोग है, द्वेष दूसरा महारोग है। कभी भी हमें इस जगत में सुखी नहीं रहने देगा, सुख तो आएगा ही नहीं पास में। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण गुण दिव्य ज्ञान से हमें प्राप्त होते हैं, और अंततः कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो एक सच्चा गुरु, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में लिख रहे हैं कि सच्चा गुरु वो है जो ज्ञान प्रदान करके अज्ञान के अंधकार से हमें बाहर करे। क्योंकि अंधकार, जैसे ईशोपनिषद में वर्णन है, असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृता ताम स्थिप्रेत्याभिगच्छन्ति ये केच आत्महनोजना। ऐसे लोग जो इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं, जो प्रकृति के नियम को नहीं समझते हैं, भगवान से प्रेम करने का प्रयास नहीं करते हैं, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, उनके लिए स्थान बना हुआ है। कौन सा? ऐसा स्थान जहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, अंधकार है, अज्ञान है। ताम स्थिप्रेत्याभिगच्छन्ति ये केच आत्महनोजना। कोई भी होने दीजिए, नोबेल प्राइज विनर हो या सड़क का भिखारी हो, सभी को वहीं जाना होगा। इसीलिए इन चीजों को जानते हुए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रवेश कराएं, और इस ज्ञान के चलते उन गुणों को उत्पन्न करें जो हमारे हृदय में इन गलत भावनाओं को दूर कर सकें, और हम कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ा सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी? यस। ब्रजवासी वो हैं जिन्होंने कृष्ण के प्रति प्रेम को अपने हृदय में स्थापित कर लिया है, और वही उनके जीवन का उद्देश्य है, वो ब्रजवासी। श्रील प्रभुपाद हमारे लिए सबसे बड़े ब्रजवासी हैं, तो उनके उद्देश्यों को, उनके निर्देश को हमें पालन करना है। ब्रजवासी मतलब केवल वो नहीं जो ब्रज में वास करते हैं, ब्रजवासी मतलब जिन्होंने अपने हृदय में वृंदावन को स्थापित कर लिया, मन मोरा वृंदावन, उन्हें ब्रजवासी कहा जाए। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ जी।
ज्ञान की ये संभावना है और अंततः सुखदेव नाम होता है। बचपन से अंतर बड़े हो गए थे, ज्ञान के नाम पे बहुत कुछ भरे दिमाग में, शायद से अविद्या कहते हैं क्योंकि, और उससे तो ये उल्टा काम हो गया, सुखदेव चला हो गया। ज्ञान करके बोला जाता है, ज्ञान समझ के
झाड़ू लगवाइए, प्रभुपाद हैं रेडी। भागवतम पहला वही कहता है, झाड़ू मारकर बाहर कर दिए वो सब जो गले जो पहला हुआ था। इसीलिए जब हम सही मार्ग पर आए तो जो सब भरा हुआ है पहले का, जिसके कारण कृष्ण प्रेम जो है चला तो कहीं नहीं गया, कृष्ण प्रेम हृदय में है, केवल उसको प्रकट करना है। प्रभुपाद ने समझाया कि कृष्ण भावनामृत ये सुप्त अवस्था में हमारे हृदय में है, पुनः जागृत करना है, बस कहीं गया नहीं है, लेकिन एक मार्ग सही चाहिए। तो उसके लिए जो तीन योग्यताएं हमने बताई इस अनुवाद की, कि पहले ये जान लेना कि जो मार्ग, जो ज्ञान हमें मिल रहा है श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायियों द्वारा, उनकी पुस्तकों के द्वारा, यही ज्ञान हमें जीवन का उद्देश्य प्राप्त करा सकता है। दूसरा, अपनी स्थिति को, कि जैसे आपने कहा कि मैंने इतना सब सुना, अब सब बेकार कचरा भर गया है, तो मैं झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूं या नहीं हूं, ये हमें जानना चाहिए। मतलब जैसे भागवत में कहा कि इसको सब धर्म प्रोजित कई तबत्र, इसको जब भार फेंकना के लिए तैयार है या नहीं है, कि हम अभी भी उससे ही आसक्त हैं, नहीं वो भी सही है, ये भी सही है। तो इसलिए पहली चीज, जो हम अगर प्रमाणिक गुरु को स्वीकार कर लें और अपनी स्थिति स्वीकार कर लें और या भिक्षुक बने, तो निश्चित होगा हम सब भी ऐसे ही हैं। हमने भी तो कहीं ना कहीं कोई ज्ञान प्राप्त किया था कहीं पर, फिर आए यहां पर पता चला कि वो सारा बेकार था तो उसको निकालना पड़ा। तो ऐसी स्थिति सबकी है, बस गुरु को एक प्रामाणिकता से स्वीकार करें, गंभीरता लाएं जीवन में। अगर आप उस चीज को जो हृदय मन में है उसको निकालना है, तो पहली चीज बड़े ध्यान पूर्वक जप करें, क्योंकि जब प्रभुपाद समझाते हैं हमारे जो ब्रेन है उसकी जो सेल्स हैं उसको शार्प करता है, जिससे दिव्य ज्ञान बैठ सके, नहीं तो वो निकल जाएगा, सुनेंगे निकल जाएगा। तो इसलिए जप करें। तो अगर हमें इस स्थिति से बाहर आना है तो सबसे पहली चीज है ध्यानपूर्वक जप करना, दूसरी चीज है समर्पित भाव में भागवत का श्रवण करना, और तीसरी चीज नम्र भाव में सेवा करना। अगर ये तीन चीजें आप कर सकें तो जो भी आपके मन में हो निश्चित निकल जाएगा, और दिव्य ज्ञान श्रील प्रभुपाद और अन्य उनके अनुयायियों की कृपा से स्थापित हो सकेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी के? हाँ जी, माइक पर बोलिए ताकि सब लोग जान सकें।
हेलो स्वामी जी, मेरा सवाल है, हम घर से वृंदावन तो आ गए, अब कहां से शुरू?
घर से आप वृंदावन आ गए हैं अर्थात ये है कि पहला जो स्टेप है कि आपने ले लिया कि आपको ये ज्ञान हुआ कि हमें कुछ प्राप्त और करना है, घर में बने रहना नहीं है, वो उद्देश्य नहीं है। तो अब दूसरी चीज की, ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या आप सही जगह पर हैं, ये दूसरी चीज हमें लेनी चाहिए। जैसे हमने अभी इनके प्रश्न के उत्तर में बताया, तो आप कहां से ज्ञान ले रहे हैं? एक स्थान से लीजिए, वृंदावन भरा हुआ है ज्ञान लेने के लिए। और प्रभुपाद समझाते हैं ज्ञान या अज्ञान वो हमें पता नहीं, तो कभी कभी ज्ञान के नाम पर अज्ञान घुस जाता है। तो इसलिए प्रामाणिक स्थान से हम ज्ञान ले रहे हैं कि नहीं। अब आकर हम क्या कर रहे हैं वृंदावन में? केवल इधर उधर घूम रहे हैं, लोई बाजार में चाट खाने में आनंद ले रहे हैं, लोई बाजार ने कहा बाकी बिहारी जी के, चाट खाने में आनंद ले रहे हैं और लोई बाजार से कुछ खरीदने में, या इस जीवन के महत्व को समझने में? जैसे वृंदावन में कई भक्त हैं जो जप ज्यादा करते हैं, श्रवण ज्यादा करते हैं, तो वृंदावन आने का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल परिक्रमा करें और जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। वृंदावन आने का अर्थ है हम क्या सुन रहे हैं कि नहीं, रेगुलर जप कितना हमने बढ़ाया। आपको बहुत अच्छी सुविधा, आप घर छोड़कर आए हैं तो आप जितना हो सके जप कीजिए, पहली चीज, ताकि आपका मन तैयार हो जाए, और जितना श्रवण कर सकते हैं। श्रवण और कीर्तन, ये दो चीजें अगर आप जीवन में बढ़ाते जाएं, कुछ चीजें जीवन में कम करनी चाहिए, कुछ चीजों में व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे धन में जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ ठीक है, स्त्री में जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ ठीक है, लेकिन कुछ चीजों में कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। जप में हमें कभी नहीं सोचना चाहिए जो सोलह माला कर लिया बहुत हो गया, या फिर श्रवण में। तो आप यहां रहकर ये दो चीजें बढ़ाइए केवल, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जप बड़े ध्यान से जितना हो सके मंदिर प्रांगण में रहकर या मंदिर में कहीं पर रहकर करें, और जितना सुन सकते हैं, लेकिन कहां से सुनना है? प्रामाणिक स्थिति से। जैसे आप यहां आए हैं प्रामाणिक सोर्स, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा दी गई शिक्षाओं के आधार पर है, श्रील प्रभुपाद ने जो बोला पूर्ववर्ती आचार्यों के आधार पर है। लेकिन ऐसे और कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे श्रोतागण होते हैं उनकी कई श्रेणियां दी गई हैं, तो एक श्रोता की श्रेणी दी गई है बैल के समान होता है। बैल देखिए, एक बच्चा बैल को पकड़ कर ले जा सकता है, नाक में नकेल होती है, छोटा सा बच्चा, बैल इतना बड़ा है। तो एक श्रोता एक बैल के समान होता है कि जहां जो ले गए वहां चले गए, चलो आज वहां कथा हो रही है, चलो वहां जो आज वहां हो रही है वहां चले गए, कोई लाभ नहीं होने वाला। प्रामाणिक स्थान पर समर्पित भाव से श्रवण करें और उसके द्वारा निश्चित ये दो चीजें आपके लिए भगवान का स्मरण बढ़ा देंगी। तो श्रवण और कीर्तन ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी के? ठीक, भजन सुनिए ना, किसने मना किया? हमारे आचार्यों ने इतने सारे भजन लिखे हैं, कहां कमी है? मोबाइल पर भजन दूसरे सारे बहुत सारे सुने जाते हैं, अगर वैष्णव भजन है तो सुनना चाहिए, क्योंकि वैष्णव भजन का लाभ ये है कि जब कोई वैष्णव भजन हम दोहराते हैं, हमारी तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जब भगवान उसको सुनते हैं तो उनको अपने भक्त का याद आता है, ओ भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा हुआ है, अरे नरोत्तम दास ठाकुर का है, कौन गा रहा है, तो हमें भी देख लेते हैं वो। लेकिन अगर आप वो केवल गाते रहोगे शाम चूड़ी बेचने आया, तो आप चूड़ी बेचते रह जाओगे यहां पर। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।